खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको याद है कि बहुत देर पहले की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह जब अजीब अजीब काम कर रहा था, कोढ़ियों को शफा दे रहा था, मुर्दे जिंदा कर रहा था, और ख़ास कर ऐसे ऐसे गुनाह माफ़ कर रहा था जो इंसान की सोच से बाहर थे, तो यहूदियों के टोले में से बहुत से फरीसी जो यीशु मसीह की मुखालफत करते थे और कुछ समझते थे कि ये सच ही बयान करता है, जो काम करता है खुदा की तरफ से करता है। सो खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स आया था जिसका नाम सबको याद है, निकोदीमस, यहूदियों का एक सरदार। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा था, जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। सो आए हम खुदावंद अपने कलाम, अपने खुदावंद के कलाम में से जिस्म और रूह के बारे में सीखें कि जिस्म हमारी बर्बादी चाहता है, जिस्म हमारी ज़िंदगी में रूहानी फल पैदा नहीं करना चाहता बल्कि रुकावट बनना चाहता है। सो आए हम मसीही ज़िंदगी में उन बेफ़ायदा बातों पर गौर करें जिनसे हमें कुछ फ़ायदा नहीं। रोमियो आठ बाप में खुदावंद का बंदा पालूस रसूल, हमने कल सीखा था कि अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, वो उस दूसरी मौत से बच गए हैं जिस मौत का शिकार बहुत से लोग होंगे, जिसके बारे में मुकाशफा हमें 20वां बाब बयान करता है कि सफ़ेद तख्ते अदालत के सामने आसमान और ज़मीन भाग गया और किताबें खोली गईं और किताबें हयात खोली गई और जिस किसी का नाम ना मिला उसे कहाँ पर फेंका गया, आग की झील में, आग की झील में फेंका गया जो दूसरी मौत है। आपने मैंने या कोई भी, जब उसने बेटे ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो उस पर वो सजा का हुक्म ख़त्म हो चुका। ये सजा का हुक्म पालूस कहता है पहली या आठवीं बाब की पहली आयत में, पस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। ये दूसरी मौत की तरफ इशारा है। इसलिए हमें इस मौत से कोई खौफ नहीं है, हमें इस मौत से कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह में पहले ही निजात पा चुके हैं, और ये मौत सिर्फ और सिर्फ गैर ईमानदारों को आएगी, और वो तख्ते अदालत जिसे सफ़ेद तख्ते अदालत कहा गया है, ये अदालत भी गैर ईमानदारों के लिए और उन फरिश्तों के लिए है जिन्होंने खुदावंद का यकीन नहीं किया, जो नाफरमान हुए। इसलिए हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए इस सच्चाई पर गौर करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ रूह है, और खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों के सरदार को ये बात कही, तुझे नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है, जो हमें इस बात की तरफ लेकर जाता है कि कोई भी मसीही पैदा नहीं होता, मसीही बनना पड़ता है, और कोई भी रूहानी नहीं है, रूहानी बनना पड़ता है, और वो किस तरह होगा। पांचवी आयत, रोमियो आठ बाप उसकी पांचवी आयत, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी और रूहानी, दो का अदद हमें बाइबल मुकद्दस में बहुत जगह पर मिलता है। हमें सच्चाई का जिक्र मिलता है और हमें झूठ का जिक्र मिलता है। झूठ और सच यानी दो का अदद, मौत और जिंदगी दो का अदद, और फिर तारीकी और नूर दो का अदद। और यहाँ पर क्या कहा गया है, जिस्मानी और रूहानी। बाइबल मुकद्दस जब कभी भी जिस्मानी किसी को कहती है तो वो इसी बात की तरफ इशारा है कि जिन्होंने अभी तक नई पैदाइश को हासिल नहीं किया, ज़्यादातर इस बात के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप सबको याद होगा, मेरे साथ निकालें एक आयत, इस बात को हम वाज़ह तौर पर देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। पहला करंथियों उसका दो बाप, पहला करंथियों उसका दो बाप, यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस सूल जिस्मानी और रूहानी के बारे में फ़र्क बयान करता है कि हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जिस्मानी है उस बंदे और बंदी की हालत है जो अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए। सो पालूस रसूल कहता है 10वीं आयत में, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। आपके और मेरे दिल को, आप मेरे दिल को नहीं जान सकते कि उसमें क्या है, और ना ही मैं आपके दिल को जान सकता हूँ कि उसमें क्या है। इंसान इंसान के सिवा कोई किसी को जांच नहीं सकता। बहुत दफ़ा कह देते हैं कि नजूम जो है वो देखकर बता देते हैं जी आपका ये हाल है, आपके साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। वो एक लैदा बात, एक लैदा टॉपिक है अबलीसी ताकतों के कुवत से। सो आगे क्या लिखा है 12वीं आयत, मगर हम ना दुनिया की, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। हम खुदा को रूह कदस की कुदरत के बगैर जान नहीं सकते। अगर रूह नहीं है हमारा मावन हमारा मददगार तो हम उसे समझ नहीं सकते। तो आगे 12वीं आयत में लिखा है, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है। धोखा ददा गया, दुनिया का रूह नहीं बल्कि खुदा का रूह। सो दुनिया का रूह क्या है? अबलीस की तरफ इशारा है। वो दुनियावी रूह है जिसका काम क्या है? ईमानदारों का और गैर ईमानदारों का बेड़ा सत्यानाश करना, बेड़ा तबाह करना, जिंदगी को गर्क करना। सो पालूस रसूल कहता है, और हम उन बातों को उन लफ्ज़ों में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन लफ्ज़ों में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। हम ईमानदारों को पालूस रसूल कहता है कि रूहानी बातों का रूहानी बातों के साथ मुकाबला करना है। हम जिस्मानी बातों को जिस्मानी बातों के साथ ही मिलाएंगे। सो पालूस रसूल यहाँ बड़ी गहरी भेद की बातें सिखाता है, और 14वीं आयत में कहता है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। वही बात आ गई, नफसानी यानी कि जिस्मानी, वो बंदी वो बंदा जिन्होंने अभी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो रूह के मुआफ़क ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, वो रूह की आवाज़ को समझ नहीं सकते, और वो खुदा के कलाम को भी समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नफसानी है। नफसानी का जो लफ्ज़ यूनानी में पालूस रसूल इस्तेमाल करता है, उसके कहने का मतलब यही है, अभी तक नए सिरे से पैदा ना हुए लोग। और जो रूहानी है, बाइबल मुकद्दस कभी भी तरफदारी नहीं करती कि किसी को मीठा प्यारा कह दे कि तुम रूहानी हो। सो जो नफसानी जिस्मानी है वो खुदा के रूह की बातों को समझ नहीं सकते, और जो रूहानी है वो खुदा के रूह की मदद से खुदा की भेदों को, बहुत गहरी बातों को समझ जाते हैं। सो आए हम देखें कि पालूस रसूल इन दोनों जगह पर क्या हमें सिखाना चाहता है। वो कलीसिया कहता है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्यालों में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्यालों में रहते हैं। सो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले मुझे याद है कि पिछले साल 16 नौजवानों ने इसी सवाल पर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया था, कि जो कोई एक दफ़ा पैदा हुआ है वो दो दफ़ा मरता है। एक दफा पैदा होने से मुराद जिस्मानी पैदाइश। जो कोई एक दफा जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ है वो दो मौतों का सामना करेगा। वो कौन कौन सी है? पहली जिस्मानी मौत और दूसरी रूहानी मौत, जिसे कहा गया है आग की झील। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के सवाल को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दी कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। सो जो कोई एक दफ़ा पैदा होता है वो दो दफ़ा मरता है। जिस्मानी पैदाइश, जिस्मानी और रूहानी मौत, ये दो मौतें हैं। और जो कोई दो दफ़ा पैदा होता है, दो दफ़ा की पैदाइश क्या है? जिस्मानी पैदाइश और फिर नई पैदाइश। और जो कोई दो दफ़ा पैदा होता है वो एक दफ़ा मरता है। दो दफ़ा पैदाइश क्या है? जिस्मानी जिंदगी और फिर रूहानी पैदाइश। और मौत क्या है? जिस्मानी मौत। हम सिर्फ जिस्म में मरेंगे और उसके बाद क्या लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा खा वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, दूसरी मौत। इसलिए इस सवाल का आज बहुत से लोगों को सामना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ जी मैं नए सिरे से पैदा होऊंगा होंगी, और बहुत से कहते हैं नहीं, बहुत से कहते हैं नहीं। और यही पैगाम दुनिया भर में हर एक शागिर्द का था कि जाओ तौबा करो, तौबा करो, नए सिरे से पैदा हो और खुदा की बादशाही को कबूल करो। सो इन रूहानी बातों का हम रूहानी बातों से क्या करते हैं? मुआवना करते हैं, तजर्बा करते हैं, मुकाबला करते हैं। सो जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों में रहते हैं, उनके ख्यालात में, उनके कामों में। उम्मीद है कि हम यहाँ पर जिस्मानी तो हैं लेकिन जिस्मानी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। सो पहली दफ़ा जो जिस्मानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, और कहीं कहीं जगहों पर जिस्मानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो ईमानदारों की वो हालत है जिसमें ईमानदार क्या करते हैं? रूह के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। देखना चाहते हैं कि पादरी साहब आज क्या बात कर रहे हैं, मेरे साथ निकालें पहला करंथियों 3 बाब। यही लफ्ज़ खुदा का बंदा पालूस सूल ईमानदारों के लिए इस्तेमाल करता है कि ईमानदार हम जो रूहानी हैं हमें जिस्मानियों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी, हम जो निजात याफ्ता हैं हमें इस दुनिया में फ़ानी लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी बल्कि आसमानियों की तरह। सो मेरे साथ देखें पहला करंथियों 3 बाब। पालूस रसूल ईमानदारों की हालत को बयान करता है, जिस्मानी जो अभी तक पैदा नहीं हुआ एक हालत में बयान किया गया, दूसरी हालत में ईमानदारों को भी जिस्मानी कहा गया है जब वो रूह के मुआफिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। सो पहला करंथियों 3 बाब उसकी पहली आयत। और ए भाइयों, जब भी बाइबल मुकद्दस में खास करने अहदनामा में लफ्ज़ ए भाइयों देखें तो पालूस रसूल ईमानदारों से बात करता है। ए भाइयों मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए कि तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर चलते हो? इंसानी तरीक यानी कि इंसानी तरीक़ाकार पर चलते हो। मैंने तुमसे रूहानियों की तरह, पालूस कहता है, कलाम नहीं किया बल्कि जिस्मानियों की तरह। सो पालूस रसूल उनको बयान करता है पिछले ही बाब में कि खुदा के लोग, रूह की रहनुमाई में चलने वाले लोग, लोगों की ज़िंदगी क्या है? वो खुदा के कलाम को समझते हैं और जो जिस्मानी हैं वो क्या करते हैं? हसद, लड़ाई, झगड़ा और इंसानी तरीक़ाकार में ज़िंदगी बसर करते हैं। और पालूस रसूल इसीलिए उनको कहता है, इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पालूस का हूं और दूसरा कहता है अपलूस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए? यह तफरका उनमें पाया जाता था। पहले बाप में पालूस रसूल उनको ये बात वाज़ह तौर पर कहता है, कुछ अपने आप को कहते थे कि मैं अपलूस के टोले का हूं, कुछ कहते थे कि जी मैं कायफा के टोले का हूं, कुछ कहते थे जी कि मैं पालूस के टोले का हूं, और कुछ कहते थे मैं मसीह का। अपलूस के यानी कि वो एक ऐसा पढ़ा लिखा बंदा था, वो कहते थे हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम बड़े पढ़े लिखे मसीही हैं। कायफा का टोला यानी कि पतरस का टोला जो कहते थे हाँ हमने अपनी आंखों से अपने लीडर की रहनुमाई में देखा है कि मौजजात का खुदा है, कुछ पतरस का टोला और फिर कुछ पालूस का। पालूस रसूल खाकसर और खुदा का बंदा जिसने बेशुमार कलीसियाओं को कायम किया। कुछ लोग कहते थे कलीसिया में मैं पालूस का हूँ और कुछ कहते थे कि मैं मसीह का। जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो कहते थे हमने मसीह को देखा है, हमने उसके साथ बैठकर खाया पिया है। हो सकता है ये वो मसीह के टोले में से वो 70 लोग हों जिनको भेजा गया कि जाकर कलाम सुनाएं। सो पालूस रसूल उनको बयान करता है कि तुम रूहानियों की तरह नहीं जिस्मानियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो, क्योंकि तुममें हसद और लगड़ाई और झगड़ा है। सो हमें पालूस रसूल यहाँ पर यही सिखाता है कि हमें जिस्मानियों की तरह नहीं बल्कि रूहानियों की तरह। आज हमारी ज़िंदगी में हम देख सकते हैं बहुत से हसद, बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत से झगड़े हैं और ये आएंगे। गैर ईमानदार को इसकी कोई समझ नहीं, वो इसके बारे में फ़र्क नहीं कर सकता। अगर आप किसी को कह दें, मुझे याद है कि मैंने एक बंदे को यही हवाला कहा था आज से बहुत साल पहले, जो तबलीग कर रहा था एक हमाम पर, और उससे मैंने कहा कि पालूस रसूल कहता है कि नफसानी बंदे खुदा के रूह की बातें समझ नहीं सकते, और उसे वाकई ही समझ ना आई कि ये क्या बात है। सो जिस्मानी लोग रूह की बात को ना समझ सकते हैं ना कबूल कर सकते हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं, पालूस रसूल के हैं। उनके नज़दीक क्या है, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। किसी गैर ईमानदार को कहें कि अपने गुनाहगार को माफ़ करो, उसके सामने क्या है, बेवकूफ़ी की बातें। दांत के बदले दांत, ये मूसाई शरीयत है लेकिन इंसानी शरीयत भी एक है कि अगर कोई तुम्हें दुख पहुँचाओ तो उसे दुख पहुँचाओ। सो हमें किसके मुआफिक ज़िंदगी गुजारनी है, जिस्म के या रूह के? रूह के। रूह क्या हमें सिखाता है, इसे आप हर अपने हालात में सुन सकते हैं। कल मुझे बहुत मौका मिला कि मैं रूह की आवाज़ को सुनूं। कल मेरा बहुत से क्या कहते हैं कि फसादों से सामना रहा, बहुत सी बातों से सामना रहा, और कुछ में मैं नाकाम हुआ, कुछ में मैं कामयाब हुआ, कुछ में मैंने रूह के मुआफ़िक ज़िंदगी के कुछ घंटे इस्तेमाल किए और कुछ में जिस्म की बात को सुनकर जिस्म की बातों के पीछे चला। सो हमारे पास हर एक दिन ये फैसला है कि रूह के मुआफ़िक या जिस्म के मुआफ़िक। और अगर आज आप यहाँ पर निकुदीमस सरदार काहिन की तरह हैं कि अभी तक शख्सी तौर पर यसु मसीह को कबूल नहीं किया, तो उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मान सकते हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा हम इस बात के अंदेशे में, जिसे कहते हैं पलेखे में रहते हैं कि हमारा छोटे होते हुए मखसूसियत हो गई थी, इसके बाद हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर निकुदीमस सरदार काहिन, जो काहिन था जिसने सब कुछ किया, यसु ने उसे बड़े वाज़ह लफ्ज़ों से कह दिया नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। और वो उस वक्त क्या था, जिस्मानी, इसीलिए उसे रूह की बातों की समझ ना आई। और जब उसने कबूल किया तो पैगाम क्या था, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो कोई एक दफ़ा पैदा होता है उसे दो मौतों का सामना होगा, और जो दो दफ़ा पैदा होता है उसे एक मौत का सामना होगा। तो आए इस सवाल के साथ कुश्ती करें आज इस अंदेशे में ना रहें। अगर यीशु मसीह ने सरदार काहिन से कहा है, जिसने तमाम तकाजे, तमाम हुक्म, तमाम बातों को पूरा किया, जिसका आठवें दिन खतना हुआ था, जैसे हमारा आज के दौर में मखसूसियत करते हैं। सो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मखसूसियत को हम किस तरह कह देते हैं कि जी इस मखसूसियत ने बच्चे को मसीही कर दिया। मखसूसियत बच्चे को इसलिए की जाती है ताकि माँ बाप बेटे और बेटी की जिम्मेदारी लें, ताकि इसे मसीह के बारे में सिखाएं। क्योंकि अगर हम ये यकीन करते हैं कि मखसूसियत के दिन कोई बेटी या बेटा मसीही बन गया है, तो फिर हम में और मुस्लिम लोगों में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो भी जब बेटा या बेटी पैदा होते हैं उनके कानों में अजान देते हैं और कहते हैं कि ये मुस्लिम हो गया। हिंदुओं में और हम में कोई फ़र्क नहीं, जब उनके घर पैदा होता है तो उसकी कुंडली लिखी जाती है और कहते हैं कि इसके लिए देवी देवताओं के आगे चढ़ावा चढ़ाया जाए और ये हिंदू हो गया। वाहद मसीहत है जो हमें आज़ादी का पैगाम देती है। जो कोई खुदावंद यीशु को कबूल करेगा वो निजात पाएगा। सो ये बातें गहरी हैं, लेकिन ये रूह की बातें हैं, खुदा के कलाम में से हैं, पादरी फैसल की अपनी बातें नहीं। इन बातों के साथ हमें कुश्ती करने की ज़रूरत है, ताकि हम बताने वाले बने कि रूह क्या है और जिस्म की बातें क्या हैं। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ करें।